मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 1 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय में मैं राज्य का जो हमारा लोक कल्याणकारी स्वरूप है उसके अंतर्गत कुछ बातें आप सबसे शेयर करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। और सच पूछे तो दूसरी घटनाएं आज कुछ ऐसे विशेष हैं भी नहीं। कल हम लोगों ने बात की थी कि चीन के 59 ऐप्स को भारत ने प्रतिबंधित कर दिया है, और इसके बारे में जब मंत्रालय से, खासकर जो हमारा होम मिनिस्ट्री है उससे जब कुछ सरकार को रिकमेंडेशन मिली थी तो उसके आधार पर सरकार ने ये कदम उठाया, और हमारा जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसको भी कुछ इस तरह की सूचनाएं लगातार मिलती आ रही थी। आज के अखबारों में आपने देखा होगा कि इस घटना को लेकर के आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं और एडिटोरियल कमेंट्स भी लिखे गए हैं। एक अच्छी बात मुझे आज के एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद जो लगी वह दोस्तों यह कि इससे क्या होगा, आगे कैसे आगे बढ़ेगा, बात कहां गड़बड़ होगी, करना चाहिए थे या नहीं करना चाहिए था, इसे केंद्र में न रखकर इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत को क्या करना चाहिए। और यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत अच्छी बात है। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि हमारे मंत्री जावड़ेकर जी जो हैं उन्होंने शायद एक ऐप पर जब प्रतिबंध लगाने की बात कही गई तो उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि भारत का आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम है, कुछ इसी तरह की बात उन्होंने कही थी। यानी कि ऐप पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे उन्होंने आत्मनिर्भरता से जोड़कर देखा था। दोस्तों सच पूछे तो सिविल सर्विस की तैयारी करने के बारे में हमें इसी तरह से थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। अब आप देखें कि सामान्य तरीके से सोचेंगे कि भाई ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इसका भला अब आत्मनिर्भरता से क्या संबंध हुआ होगा, लेकिन जब आप आज के एडिटोरियल कमेंट्स और कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि नहीं, इसका आत्मनिर्भरता से बहुत बड़ा संबंध है। अब आप देखिए कि इसका संबंध कैसे है। एडिटोरियल कमेंट्स के तहत एक बहुत अच्छा ये प्रश्न उठाया गया है, और वो ये कि देखिए हमारे यहाँ इतने IIT इंस्टीट्यूट हैं और वर्ल्ड रेनाउंड इंस्टीट्यूट हैं, हमारे यहाँ इतने अच्छे इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं, और वो इंजीनियर्स बकायदे अमेरिका के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो नासा हो या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट और ये सब हैं, इन कंपनियों में जाकर के काम कर रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं विदेश अमेरिका में, खासकर 25% से अधिक जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो भारतीय हैं। फिर सवाल ये उठता है कि भारत अपने यहां कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, हम क्यों नहीं इस तरह की तकनीक डेवलप कर पा रहे हैं कि हमारे अपने सॉफ्टवेयर हों, हमारे अपने हार्डवेयर हों, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ बहुत अच्छा कर ले जाएं। चीन ने यही किया है, चीन ने अपने ऐप बना लिए हैं, और आप देखिए कि वो ऐप भारत में आ रहे हैं और भारत में इतने जबरदस्त रूप से वो डाउनलोड हो रहे हैं, तो हमने अपना ऐसा कुछ अभी तक क्यों नहीं बनाया, ये प्रश्न उठाया है। और इस प्रश्न को उठाते हुए ये बकायदे कहा गया कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि अब हम समझें कि हमें इस क्षेत्र में जो शोध और अनुसंधान होने चाहिए उस पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है, और जब हम अपने ऐप के बारे में सोचेंगे, अपने हार्डवेयर और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम के बारे में सोचेंगे तो आपको क्या नहीं लगता है कि हम आत्मनिर्भरता के बारे में ही सोच रहे हैं। तो दोस्तों जो बार बार ये कहा जाता है कि संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर के आता है, तो आप ये कह लीजिए कि ये संकट आया है तो यह इसी तरह का एक अवसर लेकर के हमारे सामने आया है। आप देखिए कि हमारे यहाँ कितने मोबाइल फोन यूज में आते हैं जनसंख्या के कारण, और ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है ये कहाँ के हैं, ज्यादातर अब चाइनीज मोबाइल हो गए हैं। अब जब चाइनीज मोबाइल होंगे तो जो अपना हार्ड सॉफ्टवेयर वो उसमें डालेंगे वो कुछ इसी तरह से होंगे, जहां चाइनीज ऐप ज्यादा अच्छे से चल सके तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर अगर चाइना इसी तरह से इस क्षेत्रों में फैलता चला गया और हम उस पर निर्भर होते चले गए तो बात केवल जासूसी की ही नहीं है, सूचनाओं पर नियंत्रण पाने की ही नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं साइबर अटैक की भी है। और आप देखिए कि किस तरह से चाइना पर अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये आरोप लगाया भी है कि उसके यहाँ साइबर अटैक किया गया है। तो दोस्तों इसे ही हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने आत्मनिर्भरता के एक अवसर के रूप में व्याख्यायित किया था, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह एक अच्छा पॉइंट है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों जहां तक कोरोना को लेकर के खबरें हैं, आप देख रहे हैं कि हम आज से अनलॉक टू में प्रवेश कर गए हैं, यानी कि धीरे धीरे हम खुलेपन की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि एक तरफ आप देखिए कि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये तो संक्रमण से फैलने वाला रोग है, तो जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी ही नए संक्रमणों की संख्या बढ़ने की आशंका होगी, और वही अभी हो रहा है। लेकिन जो अच्छी खबर है उसी बीच में आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि जो स्वस्थ होने का जो प्रतिशत है वो लगातार बेहतर होता चला जा रहा है, और अब हम 59% तक पहुंच गए हैं, जो एक बहुत आप यूं कह लीजिए कि आशा पैदा करने वाली घटना है। अभी कुछ टीकाकरण की भी बात हो रही है, कल के न्यूज में आपने सुना है कि किस तरह से भारत की ही एक कंपनी ने टीका ढूंढ लेने की बात कही है। अब मनुष्य पर अब उसका एक प्रैक्टिकल होना है, देखते हैं कि आगे क्या स्थिति होती है। जिस दिन इसका टीका वैक्सीन बन करके आ गया सच पूछे तो उसी दिन सही मायने में कोरोना से मुक्ति मिल सकेगी, अदरवाइज तो इससे इतनी ज्यादा दहशत फैली हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कब हम इस आशंका से मुक्त हो सकेंगे। क्योंकि जो देश पहले मुक्त हो चुके थे, चाइना में भी आप देखिए कि सेकेंड वेव्स आ गई है, अमेरिका के भी दूसरे क्षेत्रों में इसका फैलाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार सतर्क रहने की जरूरत है। और इसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में बहुत ही विस्तार के साथ कहा भी है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप। इस विषय को मैंने क्यों चुना, देखिए जब हम सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो कोई भी टॉपिक हम लें तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, और इसीलिए मेन एग्जामिनेशन में खासकर जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, खासकर जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो विषय हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई आधार होता है। जरूरी नहीं है कि आधार ही हो, लेकिन ज्यादातर प्रश्नों के पीछे आधार होता है। इसीलिए मैंने इसका टाइटल यह रखा है कि राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप। देखिए यहां मैं जो राज्य कह रहा हूं तो किसी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मणिपुर राज्य के बारे में नहीं है, यह जिसे हम नेशन कहते हैं, स्टेट कहते हैं, भारत के बारे में है। तो भारत का लोक कल्याणकारी स्वरूप मतलब हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पॉलिटिकल सिस्टम वेलफेयर ओरिएंटेड है, उसका जो स्वरूप है वो वेलफेयर ओरिएंटेड है। मान लीजिए कि इसी पर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या आपको लगता है कि वास्तव में भारत के राज्य का जो स्वरूप है लोक कल्याणकारी है, वर्तमान की घटनाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। मान लीजिए एक प्रश्न बना दिया गया तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे। देखिए अब इसकी दो चुनौतियां हो गई, एक तो कह दिया वर्तमान के संदर्भ में, तो सीधी सी बात है कि समसामयिक घटनाओं से ये प्रश्न जुड़ गया। अगर आप वर्तमान के संदर्भों को नहीं लेंगे तो आपका आधा प्रश्न हो जाएगा, संदर्भ आपको वर्तमान के ही देने पड़ेंगे। और फिर दे रहे हैं राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप, क्या आप मानते हैं नहीं मानते हैं चर्चा कीजिए। अब ये आपको बिल्कुल फ्री हैंड उन्होंने दे दिया है, ये नहीं कहा है कि ये है ही और आप सिद्ध कीजिए, क्या करके आपको उन्होंने फ्रीडम दे दी है, फ्री हैंड दे दिया है कि आप बताइए क्या है। दोस्तों अभी आप पूरे के पूरे कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि जो संकट पैदा हुआ भारत में, जो सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ वो प्रवासी मजदूरों को लेकर के हुआ। प्रवासी मजदूर अपने घरों से जहां काम करते थे वहां से अपने घरों के लिए निकले, रास्ते में उन्हें परेशानी हो रही है रहने की खाने की, फिर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है और इसके बाद वो अपने घरों में किसी तरह से पहुंचे हैं। अब जब घरों में पहुंच गए हैं यानी कि वो गांव के वासी हैं, और गांव में जब पहुंच गए हैं तो उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन पेट तो रोज खाने को मांगेगा, अब वो क्या करें। उनके पास कोई ऐसी बचत नहीं है कि वो बचत लेकर के अपने गांव पहुंचे हैं और कुछ समय तक सरवाइव कर जाएंगे, जैसे कि खासकर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग कर जाते हैं, उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए, इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो सरकार का यही लोक कल्याणकारी स्वरूप उभर कर आया है। आप देखिए कि सरकार ने बकायदे 2-3 बहुत बड़ी घोषणाएं इससे संबंधित की। पहली घोषणा तो सरकार ने यही कह दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बकायदे रोजगार की व्यवस्था की गई कि आप बकायदे वहां रोजगार हासिल कर सकते हैं, उसके लिए अलग से 50 करोड़ रुपए या कुछ इस तरह दिए गए। इसके बाद जो और ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना थी उसमें बजट को बढ़ा दिया गया लगभग 40,000 करोड़ रुपए, कुछ आंकड़े जरा सा आप देख लीजिएगा, अभी मुझे तुरंत ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन शायद 40,000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए कि ठीक है जिनको भी काम की जरूरत है, क्योंकि अब ये गए हैं इनके पास काम नहीं है, गांव के लोग जो ऑलरेडी वहां हैं वो काम देने की स्थिति में है नहीं, तो कम से कम इनको काम मिल सके। और इसके साथ ही साथ शुरू में भी सरकार ने ये घोषणा की थी कि उन्हें बिना काम के भी कुछ अनाज दिया जाएगा, कल सरकार ने फिर एक जो बड़ी घोषणा की है कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना जो इससे पहले घोषणा की गई थी उसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है कि नवंबर तक यह योजना जारी रहेगी और इस योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोग कवर होंगे और उनके प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल जो वो चाहते हैं और साथ ही साथ 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को। तो कम से कम कुछ तो उनके पेट में पहुंचेगा, ऐसे लोगों को भी यह मिलेगा जो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं उन्हें अपनी मजदूरी मिलेगी, वो भी इससे लाभान्वित होंगे। तो अब आप देखिए कि जो गरीब कल्याण योजना की बात कही गई, अब हो ये रहा है कि आप इसे किस तरह से व्याख्यायित करते हैं। आज के बहुत से अखबारों ने कुछ इसके बारे में लिखा है और व्हाट्सएप पर भी मैंने बहुत से ऐसे मैसेजेस देखे हैं जिसमें इस योजना की आलोचना की गई है। देखिए, उनके पास अपने तर्क हैं, आपके पास भी अपने तर्क हैं। सवाल ये नहीं कि किसी ने आलोचना की है, किसी ने प्रशंसा की है। सबको अपने ढंग से बातों को रखने और देखने का अधिकार है और हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं। मैं उनकी आलोचना की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल, देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में आपका स्टैंड क्या होना चाहिए, बस उसकी बात कर रहा हूं। इसकी आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि सरकार जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे को इस तरह से बर्बाद कर रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने हैं, सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में छठ त्योहार का भी नाम लिया और अब आप ऐसे देखिए तो बिहार वगैरह में तो चूंकि छठ इतना ज्यादा सम्मानित और श्रद्धायुक्त त्योहार है, उत्सव है, कि अगर लोग बाहर भी चले जाते हैं तो छठ मनाने के लिए अपने घरों को लौटते हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि छठ मना करके ही फिर प्रवासी के लिए जाएं प्रवास के लिए, तो कम से कम उतने दिन तक रह सकते हैं, उनको कुछ सहारा मिलेगा। और चूंकि वहां चुनाव होना है तो एक चुनावी स्टंट है और सरकार पर जो पब्लिक का पैसा है फालतू का इस तरह से लुटा रही है, इस तरीके से तो लोग आलसी हो जाएंगे, फिर उद्योग कैसे खुलेंगे। इस तरह की अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वो शायद ज्यादा सही हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, अगर आप उस एंगल से चीजों को देखने और समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि इसका फिर दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। गांव में काम नहीं है, बरसात शुरू हो गई है, वो अपना गांव छोड़ करके अब दूसरे शहरों में काम करने के लिए जा नहीं सकते हैं, तो फिर वो क्या करें, उसका क्या विकल्प हो सकता है। देखिए, जब हम किसी चीज की आलोचना करते हैं तो हमें उसका एक कंस्ट्रक्टिव उपाय भी सुझाना चाहिए कि ठीक है, आप ये ना करके आप ये करिए। तो दो काम तो गांव में ऑलरेडी किए जा रहे हैं, बकायदे एक रोजगार योजना शुरू कर दी गई है और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ऑलरेडी जारी ही है। तो जो रोजगार करके कमाई करना चाहते हैं उनके लिए रोजगार भी दे दिया गया है, और जो कुछ भी नहीं करने की स्थिति में है या जहां ये चीजें नहीं संभव है उनको कम से कम कुछ तो पेट भरने के लिए दिया जा रहा है। और दोस्तों, एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा, भारत तो चलिए एक डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है, जो बहुत ही विकसित देश है, वहां भी बकायदे इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। वहां भी जो लोग अभी बेरोजगार हो गए हैं उन्हें बाकायदे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ताकि कम से कम वो सर्वाइव तो कर सकें। तो आपका जो स्टैंड होना चाहिए वो लगभग लगभग मुझे लगता है कि लोक कल्याणकारी राज्य को क्या करना चाहिए उस संदर्भ में होना चाहिए। तो दोस्तों, बस यही बात मुझे थोड़ी सी आप सबसे कहनी थी। अब मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: रोहित चौधरी भवाली उत्तराखंड से, ऋचा बिस्ट, रोहित यादव, गौरव मेघवाल, पायल खत्री उदयपुर से और श्रुति गौतम बेगूसराय बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करूंगा। नमस्कार।